السلام عليكم.
وعليكم السلام مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے مشہور حدیث ہے, ہندوستان میں دعوت کے لیے کہ صحابتان من امتی اعرضهم اللہ عن النار اصابتن توقع الہند و اصابتن توقع معای صاحب ابن مریم. تو بہت پہلے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آخر ہند کی کیا اہمیت ہے. ہند سے مراد وہ ہند نہیں جو ساتویں صدی عیسوی میں تھا, رسول اللہ کے زمانے میں. ہند کے مثال ہے مستقبل کا ہند, کیونکہ یہ حدیث تشریح کو ہی ہے, حال کی خبر اس میں نہیں ہے, مستقبل کی پیشن گوئی ہے اس میں. تو مستقبل میں ہند یا انڈیا کی کیا اہمیت ہوگی, یہ آخری جو دعوی مشن ہے یہ انڈیا سے اٹھے گا آخری دور کا, کی بات کلیئر نہیں ہوتی تھی. کل میں نے اس پر غور کیا تو بات کھلی. دیکھیے آپ, ایک ساتویں صدی میں یہ بات کہی گئی تھی, لیکن تھی وہ مستقبل کے بارے میں, یعنی آج کے بارے میں. اب ہم آپ اکیسویں صدی میں ہیں, اکیسویں صدی میں آج کا انڈیا کیا ہے اس کو سمجھیے. تو آج جو دنیا میں ممالک ہیں ان کی تعداد کل تقریباً 200 ہے. ان ممالک کی آپ کیٹیگری بنائیے, تو میں نے ان کا کیٹیگرائزیشن کیا تو چار قسم کے ملک سمجھ میں آیا. یہ 200 ممالک جو ہیں جنہیں, تو ایک ہے وہ ملک جن کو کہا جاتا ہے ڈیولپڈ کنٹریز, دوسرا وہ ہے جن کو آیا تھا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, تیسرا وہ ہے جن کو آیا تھا مسلم بلاک یعنی مسلم کنٹریز, تیسرا جو میں نے دریافت کیا وہ ہے نیوٹرل کنٹریز. تو ڈیولپڈ کنٹریز میں انڈیا, ڈیولپڈ کنٹریز میں امریکہ ہے اور ایک کا ممالک ہے, اور مسلم کنٹریز سے مراد وہ ملک ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, اور انڈر ڈیولپ کنٹریز مراد ایشیا اور افریقہ کے ملک ہیں جہاں ابھی کوئی زیادہ ترقی نہیں ہوئی ہے, جن کو زیر ترقی ملک کہا جاتا ہے. اور انڈیا ایک ہی واحد ملک ہے جس کو نیوٹرل ملک کہا جاتا ہے. دیکھیے یونائٹیڈ نیشنز کی جو ڈیفینیشن ہے نیوٹرل ملک کی, وہ پولیٹیکل پہلو کو لے کر کے ہے, چنانچہ وہ لوگ سوئٹزرلینڈ وغیرہ کو نیوٹرل ملک مانتے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل ڈیفینیشن ہے. ہمارے لحاظ سے یعنی دعوتی مشن کے لحاظ سے صحیح معنوں میں ایک ہی ملک دنیا بھر میں ہے, وہ انڈیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل کنٹری ہے. اور دعویٰ مشن کے لیے ضروری ہے نیوٹرل کنٹری, جہاں آپ کو معافی خالات ملے. نیوٹرل کنٹری کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو دعوتی مشن کے لیے معافی خالات ملے. تو نیوٹرل کنٹری میں کیوں کہتا ہوں انڈیا کو, اس کی چند اسباب ہیں. نیوٹرل کنٹری پلس یعنی وہاں پر انفراسٹرکچر ہونا, کیونکہ دیکھیے ڈیولپ کنٹریز میں انفراسٹرکچر ہے, انڈر ڈیولپ کنٹریز میں اچھا انفراسٹرکچر رہیں گے, اور مسلم کنٹریز میں موجود نہیں آپشن کے لیے. تو فرق بتاتا ہوں میں. ڈیولپ کنٹریز جو کہا جاتا ہے امریکہ یورپ ممالک میں, بار بار میں گیا ہوں وہاں, وہاں پر کیا ہے ترقیاں بہت ہوئی تو لوگوں کے اندر ایزی لائف आ गई, बस सहूलत हर काम होने लगा, बस सहूलत। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिजिकल सेंस में देखे तो खूब अच्छे लगेंगे आपको, उनका जिस्म अच्छा लगेगा, उनके ड्रेस अच्छे होंगे, अच्छे घर में रहते होंगे, अच्छी कार चलते होंगे, लेकिन मेरे तजुर्बे में ये सब लोग इंटेलेक्चुअली डॉर्फ लोग हैं, ज़हनी बौनापन का शिकार हैं। उनसे आप बात कीजिए तो उनकी जो उनका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन पर अच्छी बात करेंगे, वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट मिलेंगे आपको, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं उन पर कुछ भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि तो मैं उनको मानता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डॉर्फ लोग हैं, यानी यही एक पास से बौने हैं ये। बस टेक्निकल मानों में उनकी मारकें चलती हैं। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज को लीजिए, मुस्लिम कंट्रीज में क्या है, वो चीज़ है जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि खोलू कि खोलू का शिकार हो जाके तुम लोग भी। देखिए, गुलू को कहा जाता, आज कल के जमाने में कहा जाता है एक्सट्रीमिज्म। गुलू या एक्सट्रीमिज्म क्या चीज़ है? गुलू, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, ये क्या चीज़ है? यह सच पूछे तो ये दौर जवाल का फिनमना है। देखिए, जब दौर जवाल आता है तो क्या होता है, एक ही बात होती है, स्पिरिट खत्म हो जाती है, इस्लाम की शक्ल बाकी रहती है लेकिन इस्लाम की रूह बाकी नहीं रहती, स्पिरिटलेस इस्लाम के अंदर आ जाता है। तो उसमें धूम धूम मचाते हैं फार्म की, जब भी ये दौर आएगा फार्म की धूम मचाई जाएगी। तो हदीस में आता है कि फितर, इफ्तार में जब तक जल्दी करेंगे लोग तब तक वो बुखार पर रहेंगे। जल्दी का मतलब नहीं कि पेश की इफ्तार कर लेंगे, मतलब ये वो दौर है जबकि स्पीड काफी दी जाएगी कि वक्त होगा तो बस जमात को, वक्त होगा तो इफ्तार कर लो। जब फार्म की अहमियत बढ़ती है, रूह खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, भाई एहतियात एहतियात कर लो, चंद मिनट चंद मिनट जो एहतियात है ये असल में फार्म का भी देने की वजह से। तो हर मामले में वैसे होता है, जब फार्म की अहमियत दी जाने लगे तो तभी आता है एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, झगड़े चलते हैं, झगड़े होते हैं। जितने मुसलमानों की तारीख में झगड़े हुए हैं सब गुलू के बिना पर हुए हैं। और गुलू क्या है, अशकाल को अहमियत देना। कहीं दुनिया पूरी मुस्लिम तारीख में खशियत इलाही और मोहब्बत खुदावंदी में थोड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाई हुई हैं अशकाल इस्लाम पर। तो यह दौर जवाल का फिनमना है जिसको कहते हैं गुलू, और गुलू का मतलब होता है स्पिरिट के बजाय फार्म को अहमियत देना। जब भी फार्म को अहमियत दिया जाएगी तो वहाँ इंतहा फसल दिया जाएगी, इंतहा बंदी के आने में आप कुछ काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं खुद मुस्लिम मुल्कों में गया हूँ तो वहाँ क्या है, अगर आपसे रचना कर दें कि रसूलुल्लाह के लिए मोहम्मद बोल दें तो वहाँ झगड़ा कर लेंगे। मोहम्मद कर दिया आपने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने, साहबा के लिए सिर्फ नाम लेने उमर अबू बकर झगड़ा करेंगे, आप रज़ियल्लाहु तआला ने कहा तो साथ में आप कि इस किस्म के फाद पर एक झगड़े। कुरान है, अगर आप हमारे साथी जो कुरान तकसीम करते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज में जो दिवस वो होता है कि आप तर्जमा दे रहे हैं, ये तो बतन तो है नहीं, और बतन कैसे दे रहे हैं आप, आपने कुरान छू दिया है, वजू तो क्या नहीं था, आपने कुरान कैसे छू दिया आपने। ये सब जहाँ झगड़े हैं वहाँ आप दावत का काम नहीं कर सकते। दावत का काम चलता है खैरखाही पर, तालीम कल पर, نرمی پر، دوسرے کی رعایت کرنے، ٹالرنس پر غلو پر نہیں چل سکتا تھا وہ کام. تو مسلم کنٹریز میں اس لیے دعوی مشن نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر دور زوال کے وہاں پر غلو ہے، یعنی ایکسٹریمزم ہے، فنڈامنٹلزم ہے. اچھا انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ حال ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ لوگ بہت جیسے کریٹو ایج کے لوگ لگتے ہیں. ایسے کنٹریز میں گیا ہوں وہاں کے لوگ بالکل مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کنٹریز میں نے دیکھا ہے. اب جو ہے معاملہ انڈیا کا، انڈیا عجیب غریب ملک ہے کہ یہاں پہ کئی ایسی باتیں ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں. مثلا دیکھیے انڈیا واحد ملک ہے جہاں جو جہاں ٹالرنس جو ہے کی حیثیت پر عقیدے کی ہے. ٹالرنس یا ایکسپٹینس جو ہے اس کی یہ عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے ہندو دھرم جو ہے اس کو ڈاکٹر رادھا کرشن جو ہندو دھرم کے بہت بڑے مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہندو دھرم کے بارے میں کہ ہندو دھرم ہے انیکتا واد کا دھرم ہے. انیکتا واد کا مطلب ہے سچائی کا کئی ہونا. اسی کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا مینی نیس آف ریئلٹی، تعدد اپنی سچ. سوامی وویکانند گئے تھے شکاگو کانفرنس میں 1893 میں، وہاں پر تمام مضبوط کانفرنس ہوئی تھی. تو وہاں جو تقریر کی تھی انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ایکسپٹ آل ریلیجنز ایز ٹرو، یہ الفاظ بولے تھے وہ اپنی تقریر میں، وی ایکسپٹ آل ریلیجنز ایز ٹرو، ہم تمام مذہبوں کو بطور سچائی کے مانتے ہیں. ہر مذہب سچا، یعنی آئی ایم ٹرو یو آر آلسو ٹرو، میں سچا تو بھی سچے. یہ نظریہ صرف انڈیا میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں. اس کی وجہ سے آپ کو یہاں روم ملتا ہے، گنجائش ملتی ہے کہ آپ کام کر سکے. تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھی صحیح صحیح ہے، ہم ہی نہیں خالی صحیح ہیں اکیلے. اور آپ دیکھیے انڈیا میں اسی لیے صوفیوں کو موقع ملا تو اسلام کے پیشات کریں. وہ اس زمانے میں جب کہ یہاں ہندو راجاؤں کی حکومتیں تھیں، پر تب کام کیا انہوں نے، اور کسی رکاوٹیں ڈالی. جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں وہ کمیونل پالیٹکس کے ذریعے آئی ہیں. جب پاکستان کی تحریکیں چلیں اور کمیونل پالیٹکس چلائی، ہمارے لیڈروں نے ہندو مسلم ہندو مسلم کیا، ٹو ٹینشن تھری چلائی، اس سے یہاں پر مسالے پیدا ہوئے ہیں. یعنی انڈیا میں جب کمیونل پالیٹکس نہیں تھی تو بالکل ہی حالات موافق دعوت تھے. اس کا ثبوت ہے کہ صوفیوں کے ذریعے لاکھوں کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے علاوہ اور بھی کئی صفتیں انڈیا میں، مثلا انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی اس زمانے میں، تو دنیا میں اس اعتبار سے انڈیا تیسرا ملک ہے انگریزی دانوں کے، انگریزی دانی کے اعتبار سے. پہلا امریکہ، دوسرا برٹن، تیسرا انڈیا. تو انٹرنیشنل لینگویج کے اعتبار سے انڈیا تیسرا ملک ہے. یہاں پر انفراسٹرکچر ہے اگرچہ اتنا اعلیٰ نہیں جتنا کہ امریکہ یورپ میں ہے، لیکن یہی ٹھیک ہے کیونکہ اتنا اعلیٰ ہو تو پھر ایزی لائف ہو جاتی ہے، پھر لوگ بگڑ جاتے ہیں. پھر ایک چیز دیکھیے یہاں پر ہے کہ مسلمان یہاں پر نہ بہت چھوٹی مائنارٹی میں نہ زیادہ بڑی تعداد میں. بڑی تعداد میں ہو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت چھوٹی ہو تب بھی ٹھیک نہیں. یعنی سبسٹینشیل نمبر ہے یہاں ان کا تقریباً 15%. یہ بہت ہی مناسب ریشیو ہے. اور انڈیا میں دیکھیے بہت سے مسلم آرٹ کے مونومنٹ جو ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں. مثلاً تاج محل جو ہے وہ सेवन वंडर्स में शुमार किया जाता है और सयाह आते हैं उसको देखने के लिए, वो इंडिया में है और बहुत सारी चीजें। तो ये इसको मैं कहूँगा कि सपोर्टिंग एलिमेंट। तो इन सब चीजों को लेकर के इंडिया बेस्ट मुल्क है, उसका न्यूट्रल होना उसका, और दूसरी सफेद जो वहाँ जो है यहाँ पर, वो सब मिल करके सबसे बेहतर जगह है इस सदी में गांव मिशन के लिए। ये मैं सोचता हूँ कि ये उसमें है, ये दलाल नबूवत में है, जैसे ये हदीस कि रसूलुल्लाह सेवन सेंचुरी में कहीं जान सकते थे कि 21वीं सदी में इंडिया सबसे बेहतर जगह होगी दावा मिशन के लिए, जैसे अल्लाह ताला ने बताया। और देखिए हमारा जो तजुर्बा है वो ये है कि हमारे साथी हर जगह हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में उतने मौके नहीं मुसलमान हमारे दाइयों को मिल रहे हैं, हमारे साथियों को, जितने मुल्क इंडिया में मिल रहे हैं। हर जगह गैर अननेसेसरी प्रॉब्लम। और देखिए इस दौर में जो दावा वर्क मतलूब है वो ग्लोबल दावा वर्क मतलूब है, ग्लोबल दावा। तो इंडिया में पूरा इम्कान है कि यहाँ पर आप ग्लोबल दावा वर्क करें, यानी दावा एम्पायर कायम कर सकें। इंडिया में इतना जो टॉलरेंस है, यहाँ के वाकई हालात है, इसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ माइनॉरिटीज ने बहुत बड़े दर्जे हासिल कर लिए हैं। मिसाल के तौर देखिए पारसी बहुत कम यहाँ पर हैं, लेकिन उनका इंडस्ट्रियल एम्पायर है इंडिया में। ईसाई बहुत छोटी अकलियत है, लेकिन उनका एजुकेशनल एम्पायर यहाँ पर बना हुआ, एजुकेशनल एम्पायर। ऐसे अभी देखिए जो कमर्शियल ये जो आए हैं ये मल्टीनेशनल्स, उन्होंने इंडिया में अपना कमर्शियल एम्पायर बना लिया है। ये इतना ज़्यादा खुलापन है इंडिया में, इतना टॉलरेंस है, इतना न्यूट्रलिटी है, इतने मौके हैं कि जिस जो चाहे आगे बढ़े, कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो इंडिया में चूँकि कुछ करप्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको लेकर के लोग सोचते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। ये सोच जो है बहुत ही गलत सोच है, ये डिवेटेड सोच। इस्लाम का तरीका है कि आप प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके मौके को लेकर सोचें। ये तो वो है जिसे अल्लाह ताला ने मना किया, जिसे आदम को एक दरख्त कहा गया था उसका फल रखा उसके पास न जाओ, तो वो तब क्या था कि बकिया जो जन्नत है, बकिया जो दरख्त है, बकिया जो बागात हैं, उस पर आप अपना ध्यान लगाओ, उसको छोड़ो, उसको इग्नोर करो। क्योंकि वो एक सिंबल था प्रॉब्लम का, कि सिंबल को वो प्रॉब्लम का सिंबल था कि इग्नोर द प्रॉब्लम अवेयर द अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया में जो कुछ प्रॉब्लम है उसी को ले लेकर के लोग इंडिया में निगेटिव हो गए। मुसलमान सारे मुसलमान समझते हैं कि मैंने छपा हुआ देखा एक बहुत गालिब का कि हनूद और यहूद इस्लाम के अगली दुश्मन है। ये बिलासी बात झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। अगली दुश्मन इंसान का सिर्फ शैतान है और कोई नहीं है। तो इतनी सारी सिफतें जो हैं वो लेकर के मुझे मैंने सोचा तो मुझे एक शुक्र पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इंडिया में पैदा किया, कि इंडिया में हम दौर आखिर का जो दावा मिशन मतलूब है उसके उठ सकते हैं। और अब देखिए आप इंडिया में जो मैंने कहा कि दावा एम्पायर बन सकता है, यहाँ के हालात ऐसे हैं, तो ऑलरेडी यानी मिनी दावा एम्पायर बना दिया है CPS ने। CPS का जो काम है उसको आप देखिए, उसको अंडरस्टैंड मत कीजिए, CPS के काम को अंडरस्टैंड मत कीजिए। जो इंडिया से लेकर सारे मुल्कों तक फैला हुआ है, यानी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से और लिटरेचर की मदद से और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसकी मदद से। तो ऑलरेडी सीपीएस जो है सारी दुनिया में काम कर रहा है मिनी स्केल पर। तो मैं कहूंगा कि सीपीएस ने आज भी मिनी दावा एम्पायर कायम कर लिया है दुनिया में। इसको आप बढ़ाइए बढ़ाई बढ़ाई आप इसको जितना बढ़ाते रहिए। इन सब बातों को लोग सोच करके मुझे यानी दो जज्बा आया। एक तो कि अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि अल्लाह ने हमें इंडिया में पैदा किया जहाँ वाकई तो वो मौके थे कि दौ आखिर का जो दावा बशर मतलूब है और जिसके लिए इतनी बड़ी नियमत है कि आ रजा हम अल्लाह अपने नाग। यानी कैसी अजीब बात है कि दौर आखिर में एक दावा वर्क होगा एक दावती मशीन चलेगा जो लोग उससे जुड़ेंगे उनको अल्लाह ने आग से निजात का वादा कर लिया मतलब उनको जहन्नम से बचाया जाएगा उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे उनका जन्नती होना पेशगी तौर पर मुतयक्कन कर दिया गया। तो कितनी बड़ी बात है। और फिर दूसरी बात यह आई कि यानी मुझको और मेरे साथियों को मजीद नए हौसले के साथ नए यकीन के साथ नए आज़्म के साथ इस मुल्क में दावती काम को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये इसके माने ये भी लिखे हैं कि अल्लाह की मंशा कहाँ है। जैसे अल्लाह की मंशा यानी पहले दौर अव्वल में थी कि मक्का में काम किया जाए मदीना में काम किया जाए कि वहां से इस्लाम जगहों पर फैले तो इस जमाने में ये अल्लाह की मंशा नजर आती है कि इंडिया में काम किया जाए क्योंकि इंडिया में वाक़ हैं। ये बहुत अजीब बात है बहुत अजीब बात है। मुसलमान चूंकि मनफी सोच में बिल्कुल ब्लाइंड हो रहे हैं शायद दुनिया में जहां भी आप इंडिया को फिक्र करें फॉरन लोग समझे कि इंडिया अच्छा वहाँ वहाँ तो ये है वहाँ तो वो है ये मतलब मुसलमान के खिलाफ इंडिया को एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम कंट्री समझते हैं। बिल्कुल झूठी बात है बिल्कुल। देखिए इंडिया में काम करने के लिए दो लाजमी शर्तें हैं हर किसी मौाक़े हैं हर किसी आज़ादी है लेकिन दो शर्तें देनी पड़ेंगी आपको वो क्या नॉन आपको नॉन वॉलिंग बनना पड़ेगा और नॉन कमिनल यानी फिरकवारियत से पाक और तशद्दुद से पाक बस और कोई तीसरी शर्त नहीं। आप नॉन वॉलिंग बन जाइए और नॉन कमिनल बन जाइए तो सारे दरवाजे आपके खुले हुए हैं। तशद्दुद सोच के दर्जे में भी नहीं और फिरकवारियत सोच के दर्जे में भी नहीं स्ट्रिक्टली नॉन वॉलिंग स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट और स्ट्रिक्टली नॉन कम्युनल बस उसके बाद सारे दरवाजे खुले हुए। और अल्लाह के फज़ल से हमारे साथियों का तजुर्बा ये है कि जहाँ भी जाते हैं वो क्योंकि ये लोग अल्लाह के फज़ल से इससे पाक हैं तशद्दुद से और फिर कवारियत से कि जहाँ जाते हैं उनको वेलकम किया जाता है कोई रुकावट नहीं होती उनके लिए। तो देखिए जैसा कि अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह तआला की तरफ से जब मौका खुलता है तो ऐलान के साथ नहीं आता। जैसे मैं कहा करता हूँ जब बारिश होती है तो उसमें यह आवाज़ नहीं आती कि ऐ किसानों देखो फसल उगाओ ये तो किसान को खुद जानना पड़ता है। बारिश अल्लाह की तरफ से आएगी किसान को अपनी तरफ से जानना पड़ेगा कि खेती करने का वक्त आ गया फसल उगाने का वक्त आ गया। ऐसी दावत के मौके अल्लाह की तरफ से आएंगे आपको अपनी तरफ जाना पड़ेगा कि हमें दावत वक्त के लिए सरगर्म होना है। तो ये जो मैंने आज किया जो इंडिया के बारे में ये सब बातें ये सब इत्तफाकत नहीं हुई हैं। अल्लाह ने ऐसे तारीखी असबाब पैदा किए कि इंडिया में ये असबाब जमाऊँ ये मौके जमाऊँ ये इतफाक बात ना समझिए इसको। ये सब बातें जो हुई हैं, जो इंडिया के को इंतहाई दर्जा देती हैं, वो सब अल्लाह ताला ने तारीखी असबाब के जरिए पैदा किया है। अब हमें चाहिए तो हम उसको पहचानें, उसको पहचानें हम, और दाव वर्क में आपकी पूरी एनर्जी लगा दें, अपनी पूरी ताकत लगा दें। तो ये जो हदीस है, इसाब बताने में उम्मती अरदहम अल्लाह मिन नार इसाबतुन तक्दुल हिन वैसाबतुन तक्दुल माई साब मरियम, ये इससे पहले मुझे पुरासार मालूम होती थी, पुरासार। लेकिन जब ये सब बातें सामने आई तो लगा कि तो बिल्कुल वाकया है, रैशनली अंडरस्टैंडेबल है, रैशनली अंडरस्टैंडेबल है। तो देखिए, एक बात ये भी समझ लीजिए कि दावा मिशन के मौके बहुत तो देने के धूम से लोग ज्यादा कलमा पढ़ लेंगे। दावा मिशन का निशाना कलमा पढ़ाना नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए। न पैगंबरों के जमाने में था ना आज है कि लोग कलमा पढ़ें ज्यादा, नहीं, लोगों की बेखबरी को तोड़ना, लोगों के लिए अल्लाह के किसी प्लान को मालूम बना दें, लोग उसको जान लें, बाखबर हो जाए, आंसर के माने जा बाखबर करो लोगों को, बाखबर कोई नहीं कि उठो कलमा पढ़वाओ, ये नहीं कही है। तो दावा मिशन का मतलब है कि लोगों को अल्लाह के क्रिएशन प्लान से बाखबर करना, लोगों को बताना कि प्री डेथ पीरियड में अल्लाह का मतलब है, और डेथ पीरियड में क्या होने वाला है, इस बातों से बाखबर करना, ताकि वमन शाफ अलियो में वमन शाफ अलियो खुद। ये देखिए, एक बशियत है इंसान, एक बशियत है खुदाबंदी, इसमें फर्क कीजिए। बशियत खुदाबंदी जो है वो ये है कि बशियत खुदाबंदी जो है वो बबी पर इबलाग है, बशियत खुदाबंदी बबरी पर इबलाग है, और बशियत इंसानी मबनी पर एतराफ है। एक है इबलाग, एक है एतराफ, एक है बात को पहुंचा देना, एक है बात को अक्नॉलेज करना। तो अक्नॉलेज करना इंसान का अपना मामला है, वो अक्नॉलेज करे या ना करे, वमन शाफ अल यूमिन वमन शाफ अल यकफुर। तो एक साहब ने उनसे पूछा कि आप दावती काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा। मैंने कहा ये क्राइटेरियन नहीं है, ये मियार नहीं है, आप अपने जहन में खुद साफ तरह बना रखा है, ये मियार ही नहीं है। दावत का ये तस्वुर जो आपके जहन में बसा हुआ गलत तस्वुर है। दावत के देखे दो पहलू हैं, एक इबलाग, एक एतराफ, यानी पहुंचाना और अक्नॉलेज करना। तो दाई का काम है सिर्फ इबलाग, पहुंचाना पहुंचाना पहुंचाना, उसके बाद जो है मधु का काम है, मधु इतराफ करे या ना करे उसका अपना चॉइस है। अगर चॉइस ना रहे तो सारा मामले खत्म हो जाएगा, तो काम बता जाएगी। तो इन सब बातों को बहुत ज्यादा सोचिए, बहुत ज्यादा समझिए, ये सादा बात है नहीं। देखिए, हर आदमी पर वक्त आने वाला है जबकि वो मरेगा, अल्लाह के सामने पेश होगा, और मौत आएगी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, उसका वापसी नहीं है। तो सब कुछ इंसान को चाहिए कि मौत से पहले समझ ले, बात को समझेगा तो कुछ फायदा उसका नहीं समझने का। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि इंडिया में अल्लाह ताला ने ये मौके पैदा कर दिए। मैं बहुत सफर किया, बहुत से मुल्कों में गया हूँ, और मेरा जायज तजर्बा यही है कि डेवलप कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल डॉल्फिन का मसला है, अंडर डेवलप कंट्रीज में जो है वहाँ पर लोग बिल्कुल असर लगता है कि जैसे प्रिमिटिव एज में बातों को समझते नहीं, उसे एक्सचेंज करना मुश्किल है। मुस्लिम कंट्रीज में हर धर्मी है और ये गुलू है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए खड़े होते हैं और दावा वर्क जो है वो छोटी बातों को दरदार करके होता है, क्योंकि मधु जो है वो नहीं कर सकता जो आप एक मुस्लिम से उम्मीद रखे हुए, तो आपको मधु की रियायत करनी पड़ेगी, रायत मधु को अलाउंस देना पड़ेगा। और मुस्लिम कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं दूसरे को अलाउंस देना। मिसाल के तौर पर देखिए, अभी मिस्र में सो काल इस्लामिस्ट को गलबा मिल गया और सारे मुसलमान बहुत ही धूम मचा रहे हैं कि मिस्र इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, इस्लाम नहीं आया, फंडामेंटलिज्म आया है, यानी गाली लोगों को कब्जा हो गया। चाचा वहाँ आवाजें तो उठ रही हैं कि अबू जहल को तोड़ो, अरे अमिस को तोड़ो। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा वहाँ पर कारा के बाहर जो बहुत बड़ा डिजर्ट है उसमें आराम है, वो अजीब गरीब यानी अजूबा है। तो यानी आप इंटरनेट पर चेक कीजिए तो 700 में नंबर 1 पर ये आराम है, पायरेट्स उसको देखने के लिए दुनिया भर के सयाह आते हैं। तो उसको एक चाहते हैं तोड़ा लें, वो नहीं सोच पाते कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो उनको मधु समझो, ये तो मुफ्त का बैठे बैठे हमको मधु मिल रहा है अपने घर पर, जिस मधु के लिए हमें सफर करना पड़ता साहबा को ऊँटों पर और घोड़ों पर तो खच्चरों पर जाना पड़ा, तब भी नहीं पहुंच पाए तमाम कंट्रीज में। हम तो सारे कंट्रीज के लोग यही आ रहे हैं, हमारे पास मधु खुद हमारे पास आ रहा है। तो गौर कीजिए कि ये इस्लाम कोई है, ये इस्लाम नहीं है, ये वही चीज को इस्लाम ने गुलू कहा था और फरमाया था कि ला गुलू फिर दिन, ये जहाँ गुलू हमारा इस्लाम नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि अबू लहल जो वहां पर है उसको तोड़ा रहे, हराम को तोड़ा रहे। इसके माने क्या है कि उन्हें पता ही नहीं कि सबसे बड़ी चीज यह है कि दावत अल्लाह का काम, दावत अल्लाह काम के लिए मधु चाहिए, और मधु के लिए हमें लंबे अखबार की जरूरत नहीं, ये चीजें मधु को अट्रैक्ट करती है, वो खुद यहाँ आ रहा है। तो कुछ यानी उनको इसका होश नहीं। ऐसी इससे पहले आप देखिए अफगानिस्तान में धूम थी, इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया। तो वहां पर इस्लाम जो आया तो क्या हुआ, बामियान के बब्बे जो वो थे स्टैचू थे बुद्धा थे उसको तोड़ डाला, वो तो अजूबा थे, उसको देखने के लिए लगाते थे। तो उनको स्टैचू नजर आया, मधु दिखाई नहीं दिया, इसी का नाम है गुलू, इसी का नाम है गुलू। तो एक मिसाल मैंने दी इस तरह की सैकड़ों बातें हैं, कोई रसूलुल्लाह के बारे में जरा सा ऐसी लफ्ज बोल दे जो मुसलमानों को गुस्सा से दिखाई दे तो फौरन उसको मार डालते हैं। ऐसे माहौल में आप कैसे दावती काम कर सकते हैं? तो दावती काम डेवलप्ड कंट्रीज जो तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे इसलिए हो सकता कि वहाँ पर इंटेलेक्चुअल डॉल्फिन में फिक्री मिसाल पर वो ज्यादा सोच नहीं पाते, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर अभी इल्मी तरक्की नहीं हुई, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, अभी एजुकेशनली बैकवर्ड है वो लोग, वहाँ भी गहरी बातें समझ नहीं पाते वो लोग, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत कम है। मुस्लिम कंट्रीज में गुलू की वजह से काम नहीं हो सकता। तो इंडिया वाइड मुल्क है जो इन सब चीज़ों से बचा हुआ है, इसी को मैं कहता हूँ कि एक ही न्यूट्रल कंट्री है। तो इन बातों को लेकर जब आप सोचेंगे तो आपको अल्लाह का शुक्र आएगा, अल्लाह ने आपको पैदा किया इंडिया में, और हौसला पड़ेगा कि अल्लाह जो दावती काम अल्लाह को जो मतलूब है दौर आखिर का, तो वहाँ मैं मुझे अल्लाह ने भेजा है, यहाँ मुझे वो काम करना चाहिए। तो इससे आपके अंदर नया अज़्म, नया हौसला, नया शौक, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा, हर चीज में इजाफा होगा जो आप इसको डिजर्व करेंगे। लेकिन इसके जरूरी है कि आप ये जाने कि मुसलमानों को जो इंडिया से नफरत है, जो उनके नेगेटिव थाट है, वो सब झूठे हैं, वो बेसलेस है। सारे मुसलमान इसे फंसे हुए हैं, इंडिया में जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमानों से नाइंसाफी होती है, इंडिया में मुसलमानों के साथ इम्तियाज बढ़ता जाता है। अब कल मैं उर्दू अखबार पढ़ रहा था, कल की बात है, एक लीडर साहब का बयान छपा था कि इंडिया के मुसलमानों की तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर रिजर्वेशन ना आ जाए। अब सारा उनका धूम रिजर्वेशन के लिए, तो सारे लीडर ये बोली बोलते हैं, रिजर्वेशन लाओ और कम्युनल राइट खत्म करो और पुलिस को सजा दो और हम हमारे माफिक काउंट बनाओ, और इसी तरह की लाइनी बात है, बेकार बेकार बात है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो हर जगह मौजूद रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में इससे भी ज़्यादा मौजूद हैं ऑलरेडी। तो प्रॉब्लम को लेकर सोचना ये शैतानी सोच है, सही सोचे कि आप मौके को लेकर सोचें, अपॉर्चुनिटीज को लेकर सोचें, और जब आप इस तरह सोचेंगे तभी आपको इंडिया की अहमियत समझ आएगी, और तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई इंडिया ही वो मुल्क है जिसकी पेशगी सदन ने की थी, फिर आपको अंदर हौसला जाएगा कि क्या उन्हें मैं वो शख्स हूँ जो उन असावा में शामिल हो जिसको अल्लाह तआला ने जिस जन्नत की देश की खबर दे दी है। तो ये सब बातें का ताल्लुक देखिए पॉजिटिव थिंकिंग से है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, जैसा कि सारे मुसलमान के समझ में नहीं आ रहा, सारे मुसलमान इंडिया के बारे में निगेटिव हैं, नेगेटिव है। तो उसकी एक मिसाल ये भी समझ लीजिए कि कितने सारे मुसलमान जिनको आप जानते हैं वो हमारे बारे में नेगेटिव, हमारे मिशन के बारे में नेगेटिव है, हालांकि मिशन अल्लाह तआला से ये पॉजिटिव मिशन है, दावती मिशन है, ये रब्बानियत पर खड़ा हुआ, लेकिन खुद साख्ता गलत फहमियों के बिना पर नेगेटिव बने हुए हमारे। ऐसे इंडिया का हाल है कि मुसलमान जो हैं खुद साख्ता तसव्वुरात के बिना पर इंडिया के बारे में नेगेटिव बने हुए हैं। सही तजिया जरूरी है, सही एनालिसिस, वरना आप उसका जो न उस हदीस को समझ पाएंगे, न इंडिया को समझ पाएंगे, न अपने मिशन को समझ पाएंगे। तो ये चंद बातें थी, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको आपको सही फॉर्म दे और हम अपनी ड्यूटी को समझें और वो काम कर पाए जो अल्लाह का मतलूब है, ताकि आखिरत में अल्लाह हमें अपने इनामात से नवाजे, हमको जन्नत में दाखिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह।
इस मौजू पर उलमा ने अपने तासुरात जाहिर किए हैं। बालूमरी उमराबाद से बात करता हूँ
जी।
मौलाना, ग़ज़वतुल हिंद की जो पेशन गोई आई है तो हमारे लिए उसमें हिस्सेदार बनने के लिए जो ताबीर आपने की है मौलाना, एकदम बहुत बड़ी चीज़ है मौलाना। अल्लाह ताला हमारे साथ जो मामला किया है, एक मौका दिया है हम लोगों को, हिंदुस्तान वालों को। तो मौलाना मैं कल से सोच रहा हूँ मौलाना कि सलफियों के पास तौहीद अव्वलन या दुआत अल इस्लाम एक किताब अल्बानी साहब की मशहूर है, तो वो दीन की जो सियासी ताबीर की गई है वो सानी नंबर पर है, और तौहीद की जो पहले तौहीद पेश करना चाहिए, बस तरतीब का फर्क है मौलाना उनके पास।
जिसकी
हाँ सिर्फ लफ्ज अव्वल से ही मालूम होता है कि तरतीब का फर्क है, ताबीर का फर्क नहीं है। तो इसके लिए सारी उम्मत में दीन की सियासी ताबीर होने की वजह से गजबतुल हिंद को भी अब इंतजार में है मौलाना, गजबतुल हिंद के सियासी गलबे के इस हदीस को लेकर। तो इसमें उम्मत के लिए मजीद तबाही के अलावा कुछ नहीं है मौलाना, आप जो कहते हैं एक जबरदस्त वाकिया बन सकता है अगर उम्मत ये समझेगी, अफराद ये समझेंगे तो।
जी
तो तौहीद अव्वलन व आखिरन व दावत इलैही, बस यही है असल दीन की एक कामिल ताबीर जो हो सकती है।
अव्वल भी आखिर भी,
हाँ अव्वल भी आखिर भी।
जज़ाकअल्लाह। और कौन सा है?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
इयाजुद्दीन अहमद गुलबर्गा
जी।
मामा कल आपने किताबतुल तंजुल के बारे में जो आपने ये फरमाया था कि ये कदीम हिंदुस्तान मुराद नहीं है इससे, बल्कि मुस्तकबिल का इंडिया मुराद था, तो माना ये बात शुरी तौर पर मैं नहीं जानता था माना कि यहाँ मुस्तकबिल का इंडिया मुराद है, वो कल आप बताने के बाद भी वाजी हुई बात माना, ये बात जो है पर्सनल टच देती है माना हम लोगों को कि हदीस में हमारे बारे में पेशनगोई की गई है, एक थ्रिल का एहसास होता है माना। और माना आपसे ये जो बात कही थी कि ये दलाइल नबूवत में से है, तो एक तरफ यह हदीस दलाइल नबूवत में से है और दूसरी तरफ इसमें हमारे लिए एक पर्सनल टच है कि हमको एक अजीम रोल अदा करना है।
देखिए लोग जो है रोल को लेते हैं, पूरे माइंड काइंड को बुनियाद पर सारे आलम में आप हुकूमत इस्लामी कायम कर दें, इसे समझ में आते लोगों को। रोल जो है उसका ताल्लुक है अफराद से, ऐसे अफराद भी हैं बस, जैसे रसूलुल्लाह के अफराद ही भी थे, तमाम पैगाम को अफराद भी थे, आलिम साहब कभी न हुआ। तो ये कुछ साख्ता जो तस्वीर है आलमी रोल इसी ने तबाह कर रखा है, इंफरादी रोल असल है। माशाल्लाह। और कौन सा है?
अफरादुल्लतन उमरी तमिलनाथ से बता रहा हूँ
जी।
उन्होंने हदीस हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे किताबतुल तंजुल हिंद, लेकिन समझ में नहीं आती थी मौलाना हदीस, तो आपने कल ये कहा कि इसमें सातवीं सदी के हिंदुस्तान की बात नहीं है बल्कि इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान की पेशनगोई की गई है, मौलाना बहुत ही पूरी तरह हदीस वाजे हो गई मौलाना, और फिर बहुत ही आला शुक्र कल से हो रहा है मौलाना कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं जहाँ बहुत ही बड़े इम्कान मौजूद हैं दावत के लिए। जो भी आपने कल इंडिया के बारे में कहा मौलाना उसे कामिल इत्तिफाक है मौलाना।
देखिए मुसलमानों ने खुद गलतियाँ की और उसको इल्जाम देते हिंदू को, मुसलमानों ने यहाँ कमरे जगह छोड़े, दो कमी सड़क चलाई, बादशाह बढ़कर हमें दो किसी झगड़े पैदा ही होंगे, ये सब झूठी साजिशें थी झूठी, तो खुद साख्ता तौर पर झूठी साजिश चलाई, उसका डबल हिंदू की तरफ से हुआ, तो सोचते कि इंडिया बुरा है, सबसे अच्छा कंट्री इंडिया है, उसका समूह है कि सूफियों के जमाने में यही हिंदू थे और कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने सूफियों के लिए, तो एक مشیروں کے ساتھ اور ایک تھے لیڈروں کے ساتھ. لیڈروں کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑا ہے. میں صوفیوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے نہیں قید کر رہا ہوں, صرف اس لیے اس دانے میں پرم جب تک آپ پرم رہیں اور یہ سب مسئلے چڑھیں کہ ہمیں بانٹ کر الگ بھکا دو تو کچھ ہو رہا نہیں ہے. اچھا صاحب اور کون صاحب ہیں؟
محمد یعقوب عمری گلبرگہ سے بات کر رہا ہوں.
جی
ہاں, یہ حدیث ہم لوگ پہلے بھی سنتے تھے اور اس کو کوٹ کرتے تھے, مگر جو ہے دعوتی گروپ اس حدیث کو اس معنی میں کوٹ کرتا تھا کہ ابھی جو ہے غزوہ ہند ہونے والا ہے, یعنی قتال ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے دعوت کا مرحلہ ہے, ہم کو دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جب رسول اللہ نے اس طرح کے کسی قتال کی کسی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے تو اس میں فتح ہماری یقینی ہے, وہ ہونے ہی والی ہے. تو مولانا یہ اتنا فالس یہ تھا مانا اس کا لیا گیا تھا کہ یہ جو ہے صرف مسلمانوں کو اور دعات کو سیٹسفیکشن اور خوش فہمی دیتا تھا مانا, مگر آپ نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ ایک اپرچونیٹی کی طرف اپرچونیٹی بتلاتی ہے کہ آگے بڑھنے والوں کی یہ ایک پازیٹیو اور پرامن اپرچونیٹی ہے, خالص دعوتی اپرچونیٹی ہے. تو بہت بڑا فرق ہے مولانا آپ جو اس میں مانا بتا رہے ہیں اور پہلے جو علماء نے بتایا ہے, اس کو اس سے پہلے کسی نے یہ مانا نہیں بتایا ہے مولانا.
اور کون سا ہے؟
جی مولانا عنایت اللہ عمری بنگلور. مولانا یہ جو روایت ہے اصابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تقبل ہند, مولانا ہم لوگ بھی جب عمرہ بند کی طرف سے دعوت کے کام کر رہے تھے تو ہمارے اکثر ساتھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی ہمارا دعوتی مرحلہ شروع ہو گیا ہے, شاید یہی آگے چل کر کے غزوے میں تبدیل ہونے والا ہے.
اچھا
جی, اور ایک یہاں ایک ساتھی ہیں مولانا میرے کلاس میٹ ہیں, وہ جگہ جگہ مطلب دیکھیے رسالہ مشن کے بارے میں ہنگامے کرتے رہتے ہیں مسلسل, تو وہ اس حدیث کو بھی بہت زیادہ بنیاد بنا کر کے ہنگامہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غزوے سے مراد دعوت ہے, جبکہ غزوے سے مراد باقاعدہ ہماری یہاں کی ہندوؤں سے لڑائی ہوگی, کفار سے لڑائی ہوگی, پھر ہم کو فتح ملے گی. تو مسلسل اسی قسم کی تقریریں اور اسی قسم کے پروگرام کر رہے ہیں وہ تقریباً ایک مہینے سے یہاں پر.
اچھا
جی مولانا, اور مولانا جو آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے مولانا کہ اس سے مراد دور جمہوریت والا انڈیا ہی مراد ہو سکتا ہے, اس سے پہلے وہ مواقع نہیں کھلے تھے انڈیا میں, خالی جمہوریت کے بعد کھلے ہیں. تو تب یہ ممکن ہے کہ یہاں سے گلوبل دعوی امپائر اٹھے.
اس کا ایک چھوٹا سا ہمارا سی پی ایس ہے, یعنی منی دعوی امپائر پھر سی پی ایس سے قائم کر دیا آلریڈی. اس کو آپ بھاتے ایک نمونہ قائم ہو گیا, نمونہ سی پی ایس نے منی اسکیل پر ایک نمونہ قائم کر دیا ہے اور کسی رکاوٹ کے بغیر وہ ماشاء اللہ آگے بڑھ رہا ہے. اور کون سا ہے؟
فرحاد احمد بول رہا ہوں مولانا دہلی سے.
جی
مولانا, آپ نے جو بتایا کل ہندوستان کی خصوصیت اور خاص طور سے ماڈرن انڈیا کی, تو کل سی پی ایس دفتر میں میرا جانا ہوا تو وہاں پر ہمارے سی پی ایس کے ایک ممبر نے بتایا کہ سی پی ایس کے ویب سائٹ میں جتنی بھی کتابیں لوڈ کی گئی ہیں تو اس میں ایک بڑا حصہ وہاں کے ایک نان مسلم اس کا ہے, کام کرنے والے کا ہے. انہوں نے تقریباً 2 سال تک لگاتار بک کو انٹرنیٹ میں ڈاؤن لوڈ کیا, ایک دن بھی نہیں چھوڑا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ ہے اس کا کہ ہمارے سی پی ایس جو ای ورلڈ میں گئی ہے دعوت کی طور پر, تو اس میں ایک بڑا حصہ نان مسلموں کا بھی ہے. تو آپ نے جو کل بتایا تھا کہ ہندوستان کی خصوصیت, تو اس میں سے ایک اہم مثال میرے سامنے یہ آئی مولانا کا.
ماشاءاللہ بہت صحیح. اور کون سا آپ ہیں؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
عبدالباسط دعاقطر سے مولانا. کل جو آپ نے بتایا کہ انڈیا, یعنی انڈیا کے بارے میں جو آپ نے بتایا مولانا کہ انڈیا میں جو امکانات ہے جیسا ماحول ہے ویسا کہیں بھی نہیں ہے, تو مولانا مجھے آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق ہے. بعض مرتبہ یہ خواہش ہوتی ہے مولانا کہ پوری دنیا میں دور جمہوریت قائم ہو جائے تاکہ ہمارے لیے دعوت کے امکانات زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. جو مشکلیں ہیں تو وہ مشکلیں ختم ہو جائیں. ہم بہت اس کے ساتھ ہر جگہ یہ لٹریچر پھیلائیں مولانا. یہ دور جمہوریت نہیں ہونی کی وجہ سے ہر جگہ مطلب یہاں پہ ہے بہت زیادہ ہمارے لیے یعنی پرابلم ہے مولانا. ہم جس طرح انڈیا میں آزادی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے ویسا.
جی جی
دور جمہوریت ایک دائی کے لیے بہت بڑی اللہ کی مدد ہے مولانا. یہ اس کو میں شروع کرتے جانا مولانا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.